Pocket Mantra, Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Mantra. Pocket Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke taaza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taaza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंड विद गेन्स. सेंसेक्स राइजेस 124 पॉइंट्स टू क्लोज एट 81,549. निफ्टी सेटल्स अबव 25,000. Prime Minister Narendra Modi announces upcoming initiative to enable trade between India and Mauritius in local currencies. And crude oil prices decline around 1%.
घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 124 अंक कुचला. निफ्टी 25,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मॉरिशस के बीच स्थानीय मुद्रा में आगामी कारोबार शुरू करने की पहल की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत लगभग 1% घटी. घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों की खरीदारी आज भी बनी रही और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 124 अंक बढ़कर 81,549 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक बढ़कर 25,005 दर्ज हुआ. छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों के इंडेक्स में हालांकि मामूली परिवर्तन दिखा. बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.1% लाभ के साथ बंद हुआ. उधर स्मॉल कैप इंडेक्स अपने पूर्व स्तर के नजदीक थोड़ा सा घाटे में रहा.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड विद मॉडरेट गेन्स टुडे. सेंसेक्स गेन्ड 124 पॉइंट्स टू क्लोज एट 81,549. सिमिलरली निफ्टी एडेड 32 पॉइंट्स टू सेटल एट अ थ्री वीक हाई ऑफ 25,005. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also displayed a mixed trend. The mid-cap index advanced over 0.1%, while the small-cap index ended on a flat note with negative bias.
Sensex Pack की 30 में से 16 कंपनियां लाभ के साथ बंद हुईं. लाभ उठाने वालों में NTPC के शेयर सबसे अधिक लगभग 1.7% उछाल के साथ बंद हुए. Axis Bank को 1.6% का मुनाफा हुआ. Power Grid के शेयर 1.3% लाभ में रहे. उधर घाटा उठाने वालों में अव्वल रही इन्फोसिस कंपनी, जिसके शेयर 1.5% लुढ़क गए. टाइटन को लगभग 1% का घाटा हुआ. हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 0.8% से अधिक नुकसान के साथ बंद हुए.
In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 14 out of the 21 sectors logged gains. Oil and gas surged 1.2%, power rose over 1% and energy added almost 1%. Among the top laggards, focused IT as well as IT dipped almost 0.6% each. Auto lost over 0.3% and consumer discretionary slipped over 0.1%.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 34 पैसे नीचे आया. 88.44 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 97.95 पर कारोबार कर रहा था. डॉक्टर शर्मा, बाजार में पिछले कुछ सत्र से हम देख रहे हैं कि तेजी का सिलसिला बना हुआ है. आज भी थोड़ी सी तेजी के साथ बंद हुई और निफ्टी तो 25,000 के स्तर से ऊपर एक बार फिर पहुंच गया. किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को?
मनोज जी, इंडिया की मार्केट में बहुत स्ट्रांग रेजिलियंस बनी हुई है, जो हम पीछे काफ़ी महीनों से देख रहे हैं, जब से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और गहराई हैं और उसके बाद जो टैरिफ का जो प्रभाव पड़ा, फिर भी हमारी मार्केट जो है काफ़ी रेजिलिएंट मार्केट देखी गई है। जो 25,000 का निफ्टी है उसके आसपास ही निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है, और अभी जो संभावनाएं हैं आने वाले टाइम में वो बहुत ही आगे ऐसे संकेत दे रही हैं कि अगर चीज़ें फेवरेबल होती हैं, खास करके जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है ग्लोबली, अगर उसमें कुछ गिरावट आती है तो हमारी मार्केट्स एक आगे का मूव लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, हमारा GDP ग्रोथ, हमारा इन्फ्लेशन, हमारे एक्सपोर्ट्स और हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सभी मार्केट को बहुत अच्छा सेंटिमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। GDP हमारा बड़ा अच्छा 7.8% पे ग्रो किए हम फर्स्ट क्वार्टर में। उसके बाद इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली, जो CPI बहुत तेज गति से नीचे आया है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इंटैक्ट है। IIP नंबर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स भी डिस्पाइट इतने ज़्यादा हैंडविंड्स के टैरिफ लगने के बावजूद भी हमारा जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो अभी तक इंटैक्ट है। तो संभावनाएं बहुत ही आने वाले टाइम में मैं ये कहूँगा सुदृढ़ हैं, जो इंडिया की मार्केट को बहुत अच्छी रेजिलियंस इस जंक्चर पे दे रही हैं। जबकि जो हेडविंड्स है वो हर एक महीने और ज़्यादा गहरा रही है। अगर हम चाहे वो युद्ध की स्थिति हो रशिया और यूक्रेन में, या फिर इधर मिडल ईस्ट में, या फिर टैरिफ्स की बात हो, तो सभी जो नेगेटिव्स हैं उनके बावजूद भी आवर मार्केट्स आर वेरी वेरी रेजिलिएंट।
डॉक्टर शर्मा, वी हैव सीन दैट द मार्केट्स हैव गॉन अप फॉर द फोर्थ स्ट्रेट डे, बट द गेन्स हैव बीन माइनर। इफ यू लुक एट द सेंसेक्स पोजीशन राइट नाउ एट 81,549, टेक्निकली स्पीकिंग DIIs have been the net buyers in the market. They've taken long positions in our market. Do you expect a correction tomorrow or in the coming week based on what's happening right now?
Arjun, as I said to Manoj ji, that market resilience is very, very strong at this juncture, supported by the macroeconomic fundamentals, decelerating inflation, and some expectations from the global markets, like inflation in US, which was expected that to come down, but that has not come down from the sticky level of 2.7%. India's parameters, India's inflation, India's GDP numbers are supporting the trajectory of Sensex and Nifty at this juncture. And the DII, they are the major supporters of the economy and the stock market, because they are believing in India's growth story. Like the FII hot money, they sometimes book profits and go away, then they again come to at lower levels. But DIs are consistently investing in India's markets because they are looking at the growth trajectory in the coming years, that India is projected in higher and higher level. According to IMF, in the next 5-6 years, India will grow more than 6.5% on an average. And beyond IMF numbers, we have shown to the world that our growth is much, much higher than the anticipation by IMF. We are growing at 7.8% in the first quarter. And the projections are that our growth will remain intact more than 6.3% and 6.4% for the current financial year. And in the next financial year also, we will be more than 6.5% on the basis of parameters like the reforms undertaken by the government during the recent days.
The Sensex, from its high of 81,642, settled at 81,549 primarily because of IT, and they depend upon exports to countries like the US, and their revenue is in dollar terms. Do you think that the headwinds which is being caused is a reason why we are seeing a correction in the market, but you're also seeing activity from private equity?
Yes, Arjun, because IT is majorly driven by the demand scenario in the foreign market, particularly in the Western markets. And this is a news-based volatility, I would say, because IT stocks are totally dependent on the scenario happening in the global market, particularly the US. As some news comes from Trump that they are going to talk positively, then the IT stocks go up. And sometimes they speak negatively, then the IT stocks go down. So that is the वॉलेटिलिटी कॉज्ड बाय द सच काइंड ऑफ न्यूज।
जी श्रोताओं, यहां हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र, बने रहिए हमारे साथ। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख दिखा है। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में आज 1.6% से अधिक की वृद्धि हुई। उधर जापान का निकेई 225 सूचकांक 1.2% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.9% की तेजी आई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स बढ़ा ही। उधर सिंगापुर में भी तेजी बनी रही और वहां का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% ऊपर उठकर बंद हुआ। हालांकि बिकवाली का दबाव हांगकांग में देखने को मिला और हैंगसेंग सूचकांक 0.4% घाटे में रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी शुरुआती कारोबार में तेजी दिख रही थी। अंतर्देशीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 40 0.9% ऊपर चल रहा था। लंदन की फुटसी 100 में 0.5% की तेजी दिख रही थी, जबकि जर्मनी का डेक्स भी 0.3% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। कुल मिलाकर हम यदि भारतीय बाजार और एशियाई बाजार के साथ तुलना करके देखें तो हम वैश्विक बाजारों में भी कुल मिलाकर तेजी ही हर जगह देख रहे हैं। भूराजनीतिक तनाव अपने स्थान पर है। एक दूसरे के बीच जो टैरिफ को लेकर आपसी तोल मोल और कह लें कि तनाव या कभी नरम कभी गर्म की हवा अलग चल रही है, लेकिन शेयर बाजार औसतन हर जगह अब तेजी में दिख रहा है, ये क्या दर्शा रहा है?
देखिए मनोज जी, इसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो फेड के ऊपर है कि आने वाले टाइम में जो फेड का अगला मीटिंग होने वाला है उसमें वो रेट कट करेंगे, फेड रेट कट करेंगे, जो कि संभावित है कि वो कैसे भी करें या प्रेशर में है या जो भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी संभावना है कि फेड आने वाले टाइम में रेट कट करेगा, जो नेक्स्ट उसका पॉलिसी रिव्यू आएगा, जिससे मार्केट्स के ऊपर सीधे तौर पे असर हो रहा है कि जब यूएस अपना रेट कट करेगा तो अदर जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज हैं, वहां पे भी उसका असर बहुत अच्छे से दिखाई देगा। क्योंकि क्या है कि रेट कट होने से दूसरे कंट्रीज के पास भी एक ऐसा स्कोप बनता है कि वो अपना जहां जहां भी इन्फ्लेशन कम है वो अपना रेट कट कर सकते हैं। तो एक ग्लोबल मूव में एक रेट कटिंग का सिलसिला जो है वो एक यूएस की तरफ से चालू हो सकता है। तो अभी देखना होगा कि आने वाले टाइम में फेड क्या डिसीजन लेता है, वो 25 बेसिस पॉइंट कट करता है या 50 बेसिस पॉइंट कट करता है या फिर कुछ भी नहीं करता, क्योंकि अभी देखा गया है कि इन्फ्लेशन बहुत ही स्टिकी है। इन्फ्लेशन जो अभी बढ़ा भी है, जो भी डेटा आया है उसके अनुसार इन्फ्लेशन 2.9% हो गया है, पहले 2.7 था। तो ये जो मार्केट्स में हम एक ऐसा मूव देख रहे हैं, जो आपने बताया कि एशियन मार्केट्स में और सब जगह पे कुछ ऐसा मार्केट्स में ब्राइटनेस है, तो उसके पीछे यही कारण है मेजरली कि जो इन्फ्लेशन का जो इंटरेस्ट रेट का ट्रैजेक्टरी है वो एक फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट्स को, कि आने वाले टाइम में लिक्विडिटी सिनेरियो इंक्रीज हो सकता है, जिससे कि कॉमोडिटी प्राइसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, खासकर जो गोल्ड प्राइसेस हैं और जो इक्विटी मार्केट्स।
कुल मिलाकर श्रोताओं, वैश्विक बाजारों में तरलता उपलब्ध होती दिख रही, उसका असर दिख रहा खरीदारी के रूप में, रौनक यही है। लेकिन हम यहां विराम लेना चाहेंगे और विराम के बाद फिर से आपके सामने आएंगे लेकर कार्यक्रम की अगली खबरें। बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक टू मार्केट मंत्रा एंड मूविंग ऑन नाउ टू द यूएस स्टॉक मार्केट। इन दिस प्रोग्राम यूएस स्टॉक्स एंडेड मिक्स्ड ऑन वेडनेसडे। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ ए परसेंट टू एंड एट 45,491। द एसएनपी 500 क्लाइम्ड 0.3% टू एंड द सेशन एट 6,532 पॉइंट्स एंड द टेक हेवी नैसडैक कंपोजिट इंडेक्स सेटल्ड ऑन अ फ्लैट नोट विद अ पॉजिटिव बायस टू क्लोज एट 21,886। बोथ द स्टॉक मार्केट इंडिसेस नॉच्ड अनदर रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई सपोर्टेड बाय अनप्रेसिडेंटेड गेन in a multinational technology company share and cooler than expected producer inflation data. On the economic front, a report published by the Labor Department stated that PPI for final demand fell 0.1% on a month-on-month basis in August as compared to a downwardly revised 0.7% jump in July. Very briefly, can you tell us about the comparison? Because China's also released its core inflation data, its producer price index data, so has the US, and in fact US inflation has gone up by 20 basis points while their stock market is at an all-time high. How do you explain the stock market and the economic performance of both the countries in comparison?
Yes, Arjun, because the stock markets went up yesterday and the inflation number has come recently, I believe an hour ago. That's why the markets were in anticipation that inflation will remain sticky or come down from 2.7% to 2.6 or 2.5, and the Fed rate is going to cut the rates in the coming policy review. But now the inflation is 20 basis point up on the 2.7%. Now the inflation number is 2.9%. That again at the elevated side. US economy is in the fragile situation, I would say, because the GDP numbers are also on an average.
And jobless claims have gone up by 8,000.
Yes, yes, that's why I believe in the coming times, the trajectory of inflation will remain high because of the tariffs, because this is the impact of only last week of August 2025. In the September, because the full tariff will be implemented, and now the consumer price inflation can go up because of the high tariffs imposed by US administration, because they have imposed more than 25% tariff on many countries. Like India is facing more than 50%. So all these items, which are majorly the labor-intensive items, will become dearer, and the inflation trajectory is expected to remain sticky or move up from the current level of 2.9%.
Very briefly, is China managing its inflation better?
Yes, China always maintains the inflation better as compared with many economies in the world economic system. But the advanced economies, though their tolerance level is at around 2%, but they are facing the sticky inflation trajectory since the last many years. Like US, their inflation is not coming down from the level of 2.7 or 2.6 or 2.9%. The inflation has become very, very sticky at this level. But going forward, I believe maybe because of some pressure or maybe because of some economic fragile conditions in the US, the Fed is expected to cut the rate by 25 basis point or 50 basis point. That is the expectations of the people, expectations of the businesses, and expectation of the stock markets at this juncture.
श्रोताओं, यहीं पर हम लेना चाहेंगे एक विराम. विराम के बाद फिर से लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम मार्केट मंत्र. बने रहिए हमारे साथ. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच आज वाराणसी में द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के कई मुद्दों पर समझौते किए गए. इसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाने, वित्तीय बुनियादी ढांचे के विस्तार पर बल देने तथा विकास के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने संबंधी महत्वपूर्ण फैसले हुए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि भारत और मॉरिशस दोनों के बीच स्थानीय मुद्रा में आगामी शुरुआत कारोबार करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है.
ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है. भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है. मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है. ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा. फ्री, ओपन, सिक्योर, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है. इस संदर्भ में मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा और मैरिटाइम कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
आइए आगे बढ़ते हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ रही है. पटना में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों अब तक हुई प्रगति से संतुष्ट हैं.
फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें. उस करार का पहला अंश फर्स्ट ट्रेंच नवंबर 2025 तक फाइनल करें और लगभग मार्च से इस विषय पर बड़ी गंभीरता से बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, प्रगति हो रही है.
Prime Minister's vision of creating a more efficient and citizen-friendly economy was realized as the GST Council has simplified the indirect tax system into a two-tier structure of 5% and 18% from a four-tier structure. Today, we look at how these reforms help the automobile industries.
Under the next generation GST reforms, the government has extended significant relief to the automobile sector. GST on small cars and two-wheelers with engine capacity below 350cc has been reduced from 28% to 18%. Similarly, commercial vehicles such as buses, trucks, three-wheelers and all auto parts will also see the tax rate being brought down to 18%. Electric vehicles continue to benefit from the lowest tax slab of 5%, while luxury vehicles will now attract a higher rate of 40%. Speaking to the media, Ranjit Mishra, an automobile trader, described the new GST reforms as a Diwali gift that will have a considerable impact on the common man.
जिस तरीके से उन्होंने GST 28% से ऑटोमोबाइल पे 18% लेके आया, 10% अराउंड बहुत मायने रखता है और उसके अलावा 35 ऐसी वस्तुएं हैं जिस पे GST नील कर दिया है.
With Adarsh Kumar, Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
So how do you see this rationalization of taxes, Dr. Sharma, from 28 to 18% and then from 12 to 5% when you take into account other aspects of manufacture as well, that includes farm machinery as well, auto components is at 18% and EVs at 5% and hydrogen fuel cells at 5% as well?
Yes, this is a great development, Arjun. I would say this is the historic development because when you reduce the indirect taxes, your consumption goes up. When the consumption goes up, that facilitates the manufacturing processes in the factory expansion. Then they deploy more and more workers in their respective premises. That is a great virtuous cycle of the economy. So now the government has provided that big push to the economy to move forward and to strengthen the growth trajectory at this level or even the more than this 7.4 or 7.5% on an average we achieved in the first half of the current calendar year. So going forward, I believe this will increase the demand trajectory in terms of the increased automobile demand, increased textiles demand, increased the durables demand, because now the rates have come down significantly from 28% of the durables to 18%. So I believe this is a great revolutionary development in the history of India's economy.
In more news, Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today hailed green finance as a backbone of a resilient and competitive economies. And now moving on to the crude oil market. Crude oil prices eased today as worries over softening U.S. demand and broad oversupply risks were offset by concerns over geopolitical uncertainties. Brent crude was trading over 1.2% down at $66.64 per barrel. And WTI crude was also trading 1.4% down at $62.78 per barrel when reports last came in. Meanwhile, U.S. crude oil inventories increased by 3.9 million barrels to 424.6 million barrels last week, according to EIA administration data. Also, OPEC made no changes to its relatively high global oil demand growth forecast for this year and next in its latest monthly oil market report. It added the world economy was maintaining a solid growth trend in the second half of this year. Speaking exclusively, we have seen that even the experts are citing that, you know, oil prices are coming down. There's also more data that if you look at Russian oil output has also gone up by 50,000 barrels per day. What is the oil market telling you in terms of supply and demand when it comes to pricing?
I think this is because of the weakness in the dollar, because that is supporting the crude oil prices at this level. Otherwise, demand is very low at the global level and production is also more than the demand. So that is not favoring the overall prices. But the dollar is weakening. That's why the prices are intact at this level.
Let's now move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost 0.3% down at 1,09,100 rupees per 10 grams and silver was trading flat low at 1,25,050 rupees per kilogram a short while ago.
MCX में चले तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य 0.3% घटकर 1,08,636 रुपए प्रति 10 ग्राम अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाला चल रहा था. वहीं दिसंबर आपूर्ति वाली चांदी बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,25,230 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको धन्यवाद देने से पहले धन्यवाद ही देना चाहेंगे. टिप्पणी का समय हम बाद में आपसे लेंगे. आपकी प्रतिक्रिया हमें पता है, आप कहेंगे कि बुलिश ट्रेंड है, तो हम बाद में लेंगे अगले कार्यक्रम में.
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices end with gains. Sensex rises 124 points. Nifty settles about 25,000. Prime Minister Narendra Modi announces upcoming initiative to enable trade between India and Mauritius in local currencies. And crude oil prices decline around 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.